हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। हम लोग हर रविवार यहां पर एकत्रित होते हैं और इस सत्संग कार्यक्रम में कुछ उद्देश्य से आते हैं, है कि नहीं। हम इस संसार में कुछ भी करते हैं उसके पीछे हेतु होता है, कुछ उद्देश्य होता है। हम यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने के पीछे उद्देश्य है। घर परिवार चला रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य है। हम यदि कहीं घर से बाहर भी निकलते हैं तो सबसे पहले मन में ये ठान के निकलते हैं कि किस उद्देश्य से मैं जा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं है कि घर से बाहर निकले और रास्ते में चलना शुरू किया उसके पश्चात हम अचरज कर देख रहे हैं, मैं क्यों निकला, मैं कहां जा रहा हूं। सबसे पहले घर में ठान लेते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं इस समय आज यहां पर जाऊंगा। तो जब हम हर रविवार को यहां पर आते हैं, कितने हैं आप लोगों में से जो हर रविवार यहां पर आते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत है। तो हम लोग हर रविवार यहां पर एकत्रित होते हैं इस सत्संग कार्यक्रम में, तो उसका उद्देश्य हमें जानना चाहिए। क्या अर्थ है? क्या मैं केवल रविवार को कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए आता हूं यहां पर, या टीवी पर कुछ ठीक प्रोग्राम नहीं दिखाते रविवार को वो लोग, तो चलो यहां पर हरे कृष्णा में अच्छा मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा अच्छा माहौल है यहां पर, शांति का अनुभव मिलता है। और रविवार के दिन पकाना नहीं पड़े, उस समस्या को सुलझाने के लिए भी ये भी एक हेतु हो सकता है। तो बहुत से हेतु हो सकते हैं। कई बार लोग आते हैं रविवार के कार्यक्रम में ये सोचते हुए कि हरे कृष्णा मंदिर में थोड़े अच्छे सुशिक्षित लोग आते हैं तो थोड़ा कांटेक्ट बनेगा मेरे बिजनेस के लिए। चप्पल चोर भी आते हैं कई बार रविवार के कार्यक्रम में, क्योंकि एक ही जगह है जहां पर लोग अपनी चप्पलें बाहर निकालकर अंदर आते हैं, वो है मंदिर। तो जो चप्पल चोर हैं उनका व्यवसाय कहां पर अधिक चलता है? मंदिरों के इर्द गिर्द। तो बहुत से हेतु हो सकते हैं हम इस रविवार के कार्यक्रम में आ रहे हैं, परंतु हमें जानना चाहिए आचार्यों से कि हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि किस हेतु से हमें सत्संग में आना चाहिए। श्रीपाद शंकराचार्य अपने एक बहुत ही सुंदर श्लोक में वो कहते हैं कि सत्संग में आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सत्संगत्वे निसंगत्वा निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तो इस श्लोक की शुरुआत उन्होंने की है सत्संगत्वे, सत्संग में कोई व्यक्ति आता है उससे, जैसे कि हम लोग सब आज यहां पर सत्संग में आए हैं। तो उन्होंने इस श्लोक की शुरुआत की है, कोई व्यक्ति जब सत्संग में आता है उससे, और इस श्लोक का अंत होता है जीवन मुक्ति, कि सत्संग में आने का अंततः अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? क्या हम यहां पर आत्महत्या करने आए हैं? इस जीवन से मुक्ति, इस जीवन में इतनी सारी तकलीफें हैं, कल सोमवार ऑफिस जाना है, सबसे बड़ी तकलीफ वही है, बिल भरना है इलेक्ट्रिसिटी का, बीएमसी का, यहां क्या है एनएमसी का, बिल भरना है, बच्चों के स्कूल की फीस, पत्नी मांग रही है पैसा, और बहुत कुछ। तो ये सब यदि सत्संग में आने से ये सब से मुक्ति मिल जाएगी, तो हर रविवार क्यों, मैं हर दिन इस सत्संग में आने के लिए तैयार हूं। तो जो जीवन मुक्ति है उसकी परिभाषा क्या है? एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, इहायस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु का यह श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति यदि उसे जीवन मुक्त कहा जाए, कौन है वो व्यक्ति जी उसे खड़ा करके कहें कि ये व्यक्ति जीवन मुक्त है, तो क्या परिभाषा है एक जीवन मुक्त व्यक्ति की? कैसे हम परखेंगे, जानेंगे कि ये व्यक्ति जीवन मुक्त है? जैसे कि कैसे आप जान पाते हो कि ये व्यक्ति जीवन बद्ध है या बद्ध है? कैसे हम जान सकते हैं? कोई भी व्यक्ति की परिस्थिति उसके लक्षणों से जानी जाती है। यदि आप डॉक्टर के पास जाओ अपनी बीमारी बताते हुए, तो डॉक्टर सबसे पहले नब्ज देखता है, मुंह खोलने के लिए कहता है, मुंह खोलिए, अंदर टॉर्च मारकर कुछ देखता है, पता नहीं क्या देखते हैं वो टॉर्च मारकर, कुछ तो अंदर टॉर्च मारकर देखते हैं, मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालो, फिर यहां पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो उनका एक मशीन होता है, वो हृदय पर लगाकर देखते हैं अंदर है कि नहीं। तो एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो डॉक्टर अंदर क्या बीमारी है इसको परखने के लिए सबसे पहले लक्षण ढूंढता है। यदि बुखार है तो उसका लक्षण क्या है? शरीर गर्म हो जाता है। थोड़ा बहुत डॉक्टरी जानना चाहिए हमें, नहीं तो बुखार होगा पता नहीं लगेगा, पता लगेगा कि अरे एक्सटैटिक सिम्टम्स शायद हो रहे हैं मुझे। तो डॉक्टर कैसे परखता है कि इसे बुखार है? थर्मोमीटर डाल के। जब थर्मोमीटर डालता है और जब मुंह में डालता है तो चिंता में रहता है व्यक्ति, पता नहीं पारा कहां तक चढ़ रहा है, और वो चिंता के वजह से कई बार पारा चढ़ जाता है। तो डॉक्टर स्टाइल में निकालता है थर्मामीटर और देखता है 102। तो बुखार के लक्षण होते हैं, कोई भी बीमारी है उसके लक्षण होते हैं। अब कौन व्यक्ति जेल में बंद है, क्या लक्षण है? नहीं, वो तो कारण हो गया, लक्षण क्या है कि वो बंद है, जेल में है। यदि वो खुला घूम रहा है, सत्संग प्रोग्राम में आके बैठा है, हम नहीं कह सकते ये जेल में बंद है। अरे भाई, जेल में बंद है तो सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए? जेल में होना चाहिए। और यदि जेल में भी बताया जाए कि इस कैदी को काला पानी सजा, तो उसके भी अलग लक्षण होते हैं कि उसे एक ऐसे अंधेरी कोठरी में रखा जाता है जहां पर न तो रोशनी है, न कोई सुविधा है, न वो बाहर निकल सकता है। तो सारे लक्षण हैं उस बद्ध व्यक्ति के, उस कैदी के, जो कि काला पानी की सजा भुगत रहा है। कोई व्यक्ति यदि कहे कि मैं इंजीनियर हूं, तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए कि भाई इंजीनियर हो तो कुछ लक्षण बताओ। अब एक बार एक मरीज वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने कहा कि एक्सीडेंट हुआ था बेटे का, तो डॉक्टर ने कहा तुरंत आईसीयू में। आईसीयू का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, इसलिए यमराज को भी आईसीयू कहा गया है, क्योंकि वो हर समय देखते रहते हैं आईसीयू, हमारे कर्मों को देखते रहते हैं और रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। इसलिए यदि कर्म ठीक नहीं होंगे तो यमलोक में भी एक आईसीयू है, वो इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत इंटेंसिव केयर वो देते हैं वहां पर, यमदूत अलग यूनिट में ले जाते हैं। तो ये बालक, इसका एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत डॉक्टर ने कहा आईसीयू में अंदर ले चलो इसे। तो अंदर आईसीयू में जब उस बालक को ले गए तो पिताजी अब बाहर चिंता में, बच्चा आईसीयू में है। कई बार उस समय भगवान के नाम निकलते हैं, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। तो पिताजी बाहर जब शुरू किए और कोई भी आईसीयू से बाहर आता है तो तुरंत क्या खबर क्या है, तो डॉक्टर वो बाहर आता है और बाहर जो कंपाउंडर है उसको कहता है हथौड़ा लेके आओ। तो कंपाउंडर जाके हथौड़ा लेके आता है, तो अब पिताजी और डर गए, हथौड़ा, हथौड़े से काम हो रहा है अंदर। फिर 2 मिनट बाद डॉक्टर आता है, स्पैनर लेके आओ। ये सब पुर्जे हथौड़े स्पैनर से खोला जा रहा है मेरे बेटे के। फिर 2 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आता है, स्क्रू ड्राइवर लेके आओ। तो ये पिताजी ये डॉक्टर को रुकाता है, मेरे बेटे को हुआ क्या, आप हथौड़ा स्पैनर स्क्रू ड्राइवर आप खोलने का क्या विचार कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा मेरा ब्रीफकेस नहीं खोल रहा है। तो कई बार यदि आप कहते हैं कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, यदि डॉक्टर हथौड़ा स्पैनर ये सब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा है तो ये लक्षण नहीं है डॉक्टर के। तो हर एक व्यक्ति उसकी जो भी उपाधि है, व्यवसाय है, जो कुछ है उसका, उसके लक्षणों से पता लगता है। तो यहां पर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये पूछ रहे हैं, जीवन मुक्त स उच्यते, कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसके लक्षणों को देखकर आप बता सकेंगे कि ये जीवन मुक्त है, सबसे पहले जीवन मुक्त की परिभाषा यह है कि वो व्यक्ति इस शरीर में जीते जीते मुक्तात्मा है, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। हालांकि कई बार यह कहा जाता है कि शरीर का अंत होने के पश्चात जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, मुक्तात्मा बन जाता है। परंतु यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हम वैसा व्यक्ति के विषय में कहना चाहते हैं या वैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो शरीर में इस संसार में रहते हुए मुक्त है, उसे कहते हैं जीवन मुक्त स उच्यते। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वो जीवन मुक्त इस शरीर में जीते जीते कैसे अपने आप को मुक्त बनाता है, उसके कौन से लक्षण हैं। और श्रीमद् भागवत में भागवत के एक टीकाकार वीर राघव आचार्य इन्होंने छांडोग्य उपनिषद से 8 लक्षण, जीवन मुक्त के 8 लक्षण कौन से होने चाहिए वो बताए हैं। तो हम लोग सब जो सत्संग में आ रहे हैं हर रविवार को, शंकराचार्य के अनुसार क्या उद्देश्य होना चाहिए? जीवन मुक्त स उच्यते। अर्थ यह है कि सत्संग में आ गए तो फिर से इस भौतिक संसार में फंसना नहीं, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। तो यदि हम सबको जीवन मुक्त बनना है, बनना है, तो यदि हम सबको जीवन मुक्त बनना है तो सबसे पहले जीवन मुक्त के क्या लक्षण होते हैं ये हमें जान लेना है, क्योंकि ये फिर हमें परखना है हमारे साधना भक्ति में या हम जो सत्संग में आते हैं कि क्या मेरे अंदर इनमें से एक लक्षण एक तो है या 2 या 3 या 4 या 8 जो छांडोग्य उपनिषद बताते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 5 अध्याय में जब महाराज ऋषभदेव अवतीर्ण होते हैं तो महाराज ऋषभदेव के कुछ लक्षण बताए गए हैं। महाराज ऋषभदेव जो कि भरत महाराज के पिता हुए, भरत महाराज जो आगे चल के जिनसे ये जो कुरुवंश भरत महाराज से आगे उत्पन्न हुआ, तो ऋषभदेव महाराज वो उनके कुछ लक्षण बताए गए हैं और उनके लक्षणों को बताते हुए तात्पर्य में वीर राघव आचार्य छांडोग्य उपनिषद से कहते हैं कि जीवन मुक्त के कौन से लक्षण होने चाहिए। तो 8 लक्षण हैं। कहा गया है कि एक उदाहरण दिया गया है, व्यक्ति इस संसार में रह रहा है परंतु इस संसार में रहते हुए भी इस संसार का नहीं है, वो उसे कहते हैं जीवन मुक्त। जैसे कि कई बार हम लोग मंदिर में बैठे होते हुए भी मंदिर में नहीं रहते, होता है कि नहीं, कि हम ऐसी कला सीख लेते हैं कि हमारा शरीर, हमारे कपड़े, ये पूरा हमारी काया, ये शरीर पूरा यहां पर बैठा हुआ है, बहुत वजन डाल रहा है इस मार्बल के ऊपर, परंतु फिर भी एक दृष्टिकोण से हम यहां पर मौजूद नहीं है, यहां मौजूद होते हुए भी, होता है ना। जैसे कई बार हम यदि गिने तो आज कितने लोग बैठे हैं, हो सकता है 150-200 लोग बैठे हैं, परंतु वास्तविक रूप में 150 बैठे हैं कि नहीं यहां पर, वो गिनती, उसकी गणना अलग होगी। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि एक जो भक्त होता है भगवान का, वो इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहता, उस प्रकार से हमें बनना है। और भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में कहते हैं गीता में, पद्म पत्रम इवाम भसा, ये उदाहरण दिया है कि जैसे कि एक कमल का पत्र, वो कीचड़ में रहते हुए भी गंदा नहीं होता, देखा है हमारे यहां पे कुछ उगे हुए हैं कमल, ये जो पत्र आप देखोगे इतनी चिकनी इसकी सरफेस होती है ऊपर, कि उसके ऊपर चाहे आप कुछ भी डालो वो नीचे फिसल कर गिर जाए। तो एक भक्त को उस प्रकार से इस संसार में जीना है, एक कमल के पत्ते के समान ये संसार की तुलना कीचड़ से की गई है। और आप लोग सब अनुभव किए होंगे, संसार कई बार लगता है कीचड़ के समान। तो कीचड़ में कई बार हमें जाना पड़ता है। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि कई बार हम दिन भर तो यहां पर बैठ नहीं सकते। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अरे आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, हम तो काम धंधे वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो बाहर जाकर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज सुबह हम उदाहरण दे रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि यदि हमें मंदिर से बाहर भी जाना पड़े भौतिक समाज में इस कीचड़ में, तो मन में चेतना कैसी होनी चाहिए, जैसे कि जब व्यक्ति शौच करने शौचालय जाता है, जितनी आवश्यकता है वहां रहने की उतना ही वो रहता है, फिर तुरंत बाहर, कोई वहां पर अपना घर नहीं बसाता, शौचालय में मैं घर बसाऊंगा, फ्लश के ऊपर टीवी रखता हूं, कोई अपना समुदाय वहां पर नहीं बसाता शौचालय के अंदर। और जैसे हालांकि भौतिक संसार को एक शौचालय कहा गया है, और भौतिक संसार में कलयुग, कलयुग की तुलना हम कर सकते हैं जो पब्लिक टॉयलेट होता है भारत में, कि यदि घर का शौचालय है तो थोड़ा साफ सुथरा रहता है, परंतु यदि आपका अनुभव हो कि कभी आपातकालीन स्थिति में कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर या ऐसे जगहों पर इत्यादि में जब किसी पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है तो सबसे अच्छा प्राणायाम होता है वहां पर, कि यदि उसे प्राणायाम ठीक से नहीं आएगा तो फिर प्राणों का आयाम ही हो जाएगा वहां पर नित्य रूप से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि उस प्रकार से हमारी चेतना होनी चाहिए कि जितना आवश्यक है उतना ही इस कीचड़ में रहना और तुरंत बाहर आ जाना। प्रभुपाद जी कहा करते थे, डू द नीडफुल एंड गेट आउट ऑफ इट। तो ये एक उदाहरण दिया गया है पद्म पत्र इवाम भसा भगवद गीता में। दूसरा उदाहरण ये दिया है एक नारियल का। नारियल जब कच्चा होता है तो उसके जो अंदर का भाग है वो बाहर क्या बोलते हैं उसे, कौटी, बराबर का क्या कहते हैं शुद्ध मराठी में, क्या कहते हैं कौटी। नासिक में आने के बाद मेरी मराठी की वोकैबुलरी बढ़ रही है। क्या सोपड़ा, सुबह क्या था, हाड़ांचा सापड़ा, वरवंटा और ये कौटी। करवंटी, अच्छा वो लोग की मराठी ज्यादा अच्छी है, करवंटी। तो नारियल का जो अंदर का भाग होता है और बाहर करवंटी, तो जब नारियल कच्चा होता है तो अंदर का भाग चिपका रहता है उस करवंटी से, अनुभव किया, और उसे चाकू से निकालना पड़ता है, या कई बार वो होता है गांव में वो नारियल को किसते हैं तो उसे निकाल निकाल के वो सफेद जो भाग होता है वो ऐसे निकालना पड़ता है। परंतु यदि उसे आप सुखाने के लिए रख दो तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अंदर का भाग सूख जाएगा, और अंदर का भाग सूखने से क्या होता है, वो अपने आप उस बाहर का जो करवंटी है उसे छोड़ देता है, और फिर वो क्या बनता है, खोपरा, वो खोपरा बन जाता है, और उसे गड़गड़ गड़गड़ आवाज कर सकते हैं, हाँ, अंदर वो बन जाता है वैसे। तो ये उदाहरण दिया गया है कि एक जो जीवन मुक्त होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, कि वो अब इतना परिपक्व हो गया है अपनी भक्ति में कि वो इस शरीर से अलग होके शरीर में ही रहता है, परंतु उस खोपरे के समान अलग हो जाता है उस करवंटी से। तो ये उदाहरण दिया गया। उसी प्रकार से एक जीवन मुक्त शरीर में रहते हुए भी शरीर से प्रभावित नहीं होता, मुक्त आत्मा होता है। तो सबसे पहला उदाहरण या सबसे पहला लक्षण एक जीवन मुक्त का, छांडोग्य उपनिषद कहता है अपहत पाप। सबसे पहला लक्षण है यदि कोई व्यक्ति अपने आप को जीवन मुक्त कह रहा है, अपहत पाप। अपहत पाप का अर्थ है कि वो व्यक्ति, वो भक्त, वो साधक, वो किसी भी पाप कार्य में अपने आप को नहीं लगाता। यदि कोई साधक पाप कार्य में लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, वो जीवन मुक्त नहीं है, उल्टा विपरीत, वो और बद्ध अवस्था में है। तो सबसे पहला लक्षण है कि वो शारीरिक रूप से अपने आप को पाप कार्य से दूर रखता है। ये सबसे पहला लक्षण होना चाहिए साधना भक्ति का। इसलिए जो चार नियम बताए गए हैं, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं करना, ये सारे जो चार नियम हैं, ये शारीरिक रूप पर है। सबसे पहले शारीरिक रूप पर हमें इस शरीर को पाप रूपी कार्य से बाहर निकालना है। और इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कर्मणा मनसा गिरा, कि वो व्यक्ति जो अपने कर्मों से, अपने मन से और अपने वचनों से वो यदि पाप कार्य से बचे, और केवल पाप कार्य से बचना नहीं है बल्कि पाप कार्य से बचकर भक्ति में लगना है, अपने कर्मों को, मन को और वचनों को भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि शास्त्रों के ही अनुसार ऐसे बहुत से कार्य हैं हमारे दैनिक कार्य जिनमें कि बिना हमारे इच्छा से, बिना हमारे हेतु से हम पाप कार्य में लग जाते हैं। जैसे कि बताया गया है कि जब हम खाना पकाते हैं, रोज खाना तो पकता है घरों में, तो खाना पकाते समय बहुत से कीटाणु जीवाणु मरते हैं, तो वो पाप हो रहा है। कीटाणु मर रहे हैं हमारे खाना पकाने से, तो वो पाप हो रहा है। जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय पाप होता है। पहले गांव में जब वो उखल में मसाले पीसा करते थे, तो मसाले पीसते समय बहुत से जंतु मर जाते हैं, सांस लेते समय बहुत से जंतु मर जाते हैं, कुएं से पानी निकालते समय बहुत से जंतु मरते हैं। और ये सब तो हमारे बिना समझे जाने ये सब कुछ हो रहा है, और बहुत से लोग तो जानबूझकर, बहुत से लोग तो जानबूझकर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं तो ये तो करना है, परंतु इसमें भी पाप हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी कार्य करो, उसमें कुछ न कुछ पाप के भागीदारी तो बन ही रहे हो तुम। जैसे कि यदि अग्नि जलाए हो तो धुआं तो निकलेगा, अग्नि है तो धुआं है, धुआं है इसका अर्थ है अग्नि जली है। तो कुछ कर्म करोगे तो उसमें कुछ इस प्रकार के पाप कार्य तो होते रहेंगे, जीवो जीवस्य जीवनम। परंतु अपने कर्मों से, मन से और वचनों से यदि हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यदि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। सर्व पापेभ्यो, परंतु ये सर्व पापेभ्यो तभी होगा जब सर्वधर्मान होगा परित्याग। तो दो बार सर्व ये शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक अर्ध धर्मान परित्याग होगा तब तक अर्ध पापेभ्य परित्याग होगा भगवान के द्वारा। तो जितने रेशियो में हम शरणागत होंगे उतने रेशियो में पाप से भी मुक्ति होगी। तो ये सबसे पहला, क्योंकि देखो हम इस कलयुग में हैं और इस कलयुग में पता नहीं हम कितने ऐसे कार्यों में लगे हैं जाने अनजाने पाप हो रहे हैं हमसे। जैसे कि मान लो आपने एक मकान खरीदा तो आपने बिल्डर को पैसा दिया और वो बिल्डर ने आपके लिए एक बिल्डिंग में मकान बुक कर दिया, तो इसमें कोई तो पाप तो नहीं है, परंतु आपके वजह से हो सकता है कि वो बिल्डर ने किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ा होगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। कोई गरीब वहां पर या गरीबों की बस्ती वहां पर होगी, उसे उखाड़ा होगा गवर्नमेंट को कुछ घूस खिलाकर और फिर वो बिल्डिंग मान दी। आपने वो सब नहीं किया, परंतु वो बिल्डर ने सब कुछ किया है और वो बिल्डर अंततः वो फ्लैट आपको दे रहा है, तो फिर वो गरीब को वहां से निकालने का जो पाप है उसका कुछ भाग उसको भी मिलेगा जो वहां पर आके रहने वाला है। हरे कृष्णा। जैसे कि हम बता रहे थे कि एक पुष्प भगवान को अर्पित करने से उस पुष्प का उद्धार हो जाता है, जिस माली ने वो पुष्प लगाया, जहां से वो बीज आया, जिसने वो बीज बेचा, वो सब का उद्धार होता है। वैसे ही पाप भी इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में कार्य करता है। कई बार लोग आकर कहते हैं ये मांसाहार जो आप कहते हैं निषेध, मैं किसी प्राणी का वध नहीं करता, वो कसाई करता है, मैं केवल जाकर खरीदता हूं मरा हुआ प्राणी। इसके विषय में कहा गया है कि जो मांसाहार करते हैं उनके विषय में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उस जानवर को मारने के लिए आदेश दिया, वो जो जानवर मारा है, वो जो उस जानवर को ट्रांसपोर्ट किया है, वो जो उस जानवर को खरीदता है, वो जो उस जानवर को पकाता है, वो जो उस जानवर को पकाने के बाद परोसता है, सर्विंग करता है, वो और अंततः जो उसको खाता है, वो सभी एक समान भागीदार रहते हैं। हरे कृष्णा। तो यदि कोई कहे अरे मैं थोड़ी उसे मार रहा हूं, कोई और व्यक्ति मारा है, अरे भाई यदि तुम जैसे मांसाहारी होते नहीं तो वो क्यों मारता। यदि सभी चार नियम पालन करना शुरू कर दें तो यहां के सारे कसाई घर बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग क्या पैसा चाहते हैं और वो लोग जानते हैं कि यदि ये हम बेचेंगे तो इसमें अधिक पैसा मिलेगा, तो वो लोग मार रहे हैं इस व्यक्ति ये जो मांसाहार कर रहा है इसके कारण से। तो इस संसार में देखिए हम जो कुछ करने का प्रयास करें उसमें कुछ न कुछ पाप का लेप रहता ही है। आप यदि एक रबर बैंड पहन रहे हो अपने हाथ में, अरे रबर है भाई ये, कोई लेदर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है रबर पहन रहा हूं, हो सकता है कि उस रबर का उत्पादन करने के लिए किसी देश में ऐसे ऐसे लोगों को लगाया गया होगा, कितने पेड़ों को काटा गया होगा। गाड़ी चलाते हैं उसमें टायर रबर का होता है कि नहीं, तो रबर का टायर गाड़ी में लगाने के लिए कितने पेड़ों को काटा होगा वो रबर उसका उत्पादन करने के लिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम रोज, वो न्यूज़पेपर का उत्पादन करने के लिए कितने पेड़ों को काटा होगा। इसका अर्थ क्या है, कितने जीवात्माओं की हत्या। तो आप लोग सोचें अरे तो अब न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करें, गाड़ी चलाना बंद करें, रबर बैंड यूज करना बंद करें, तो करें क्या? कहने का अर्थ ये है, भगवान ये कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि इन सब का परित्याग हम नहीं कर सकते, परंतु चेतना से इन सब से जो आसक्ति है इन सब का परित्याग कर यदि भगवान की शरण जाएंगे तो वो हमें इन सब पापों से मुक्त करेंगे जो जानबूझकर या अनजाने में हो रहे हैं हमसे। हम तो केवल कुछ उदाहरण ले रहे हैं, पेपर का, रबर का, किसी घर खरीदने का, ऐसे कितने ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं जिनके अंदर की किसी न किसी प्रकार से हम किसी पाप कार्य में लग रहे हैं, भागीदार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि शुरुआत में कर रहा हूं कि नहीं, चार नियमों का पालन करने से। जानबूझकर तो मैं कोई पाप में नहीं लग रहा, उससे शुरुआत करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहला लक्षण है जीवन मुक्त का, अपहत पाप, कि वो किसी भी पाप कार्य में अपने आप को नहीं लगाता। दूसरा लक्षण है विजर। विजर का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति, वो साधक, वो इस भौतिक संसार के जो भी शारीरिक कल्मश हैं, जैसे कि जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तो जरा या शारीरिक कोई तकलीफ, उनसे वो प्रभावित नहीं होता। ये दूसरा लक्षण है एक जीवन मुक्त व्यक्ति का। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे वो थोड़ा सा भी शारीरिक तकलीफ सहन नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को यदि एक मच्छर ने भी काट लिया तो दो घंटे तक रोएगा वो मच्छर भी बेचारा डर जाएगा, अरे ये दो घंटे तक रो रहा है, मैंने, वो भी बेचारा सोचेगा इतना बड़ा पाप तो मैंने नहीं किया, थोड़ा सा एक दो मिलीमीटर मुझे लेना था खून। तो बच्चे जो हैं देखिए वो बिल्कुल भी शारीरिक कलमश सहन नहीं कर सकते। कई बार ट्रेन में बच्चों को लेके जाओ, भीड़ को देखते ही शुरू कर देते हैं, और कई बार हमें पता नहीं लगता है कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, अंदर कोई तकलीफ होगी उसके, कि ज्यादा दूध पिला दिया इसलिए रो रहा है। तो कई बार मां सोचती है कि भूखा लगता है तो और दूध पिला रहे हैं उसे, और वो और रो रहा है, बोल नहीं पा रहा है बेचारा कि अरे वो दूध की वजह से ही तो पेट दुख रहा है मेरा। और कई बार उसे भूख लगी होती है, रो रहा है, तो हमें लगता है अरे कोई खिलौना चाहिए, तो उसे खिलौना दिखाते, तो खिलौना देखता है काट के, अरे खाने का नहीं है कुछ। तो बच्चे वो थोड़ा सा भी भूख सहन नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी तकलीफ सहन नहीं कर सकते। जैसे ही लेक्चर थोड़ा ज्यादा प्रभु जी सुनाना शुरू किए तो बच्चा रोना शुरू करता है, बड़े भी रोना शुरू करते हैं लेकिन वो जोर से दिखाते नहीं, मन में बहुत रुदन होता है, घड़ी को देखते हुए 9 बज रहे हैं, इनको तो कोई कल काम धंधे पे जाना नहीं। तो बच्चे जो हैं देखिए वो बिल्कुल शारीरिक कलमश सहन नहीं कर सकते। तो ये जो शरीर बना है हमारा, इस शरीर के विषय में कहा है, शरीर किसका जाल है? अविद्या जाल। शरीर अविद्या जाल। तो ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, इसलिए इस शरीर में हर समय कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है। कई बार यदि हम बहुत देर तक जमीन पे बैठे हैं तो पीठ दुखने लग जाती है, तो थोड़ा लेटो आराम करो, तो लेटेंगे आराम करेंगे दो तीन घंटा, अरे उठो अब पक गए सो सो के, अब उठो। फिर उठने के बाद फिर कुछ कसरत शुरू, फिर कसरत करने के बाद फिर से शरीर दर्द किया, फिर से सोए। तो ये शरीर कोई ठीक नहीं इसका, कि ये शरीर कब आपको दुख देता है कब आपको सुख देता है। हालांकि सुख तो बहुत कम देता है शरीर, केवल दुख ही दुख ज्यादा मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस भौतिक संसार में दो प्रकार के समुद्र हैं। एक समुद्र तो पानी से भरा हुआ है और दूसरा समुद्र है शोकाश्रु समुद्र, कि व्यक्ति इतने शोक और पीड़ा में है कि पीड़ा और शोक के वजह से अश्रु आ रहे हैं, शोक अश्रु। और उन शोक अश्रु से एक समुद्र बना है इस भौतिक संसार में, और उस समुद्र में सभी लौट रहे हैं, उस समुद्र में सभी तैर रहे हैं, कई डूब रहे हैं, बहुत कम लोग तैर रहे हैं उस समुद्र में। तो ये दूसरा समुद्र है इस भौतिक संसार में, शोकाश्रु का समुद्र। और ये शोकाश्रु विशेष रूप से किस लिए? देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा भक्ति में प्रगति करता है उसके अंदर शारीरिक रूप से भी थोड़ी सहनशीलता आती है। जैसे कि भगवान अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य स्ताम स्थितिक्षस्व भारत। कि भगवान ने भी अर्जुन को कह दिया कि यदि तुम्हें प्रगति करनी है इस मनुष्य जीवन में तो सहिष्णु बनो। और उन्होंने शुरुआत कैसे की, कैसे सहिष्णु बनो? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो ये स्पर्श के स्तर तक जो है वहां से शुरुआत करो। स्पर्श का स्तर क्या होता है? शारीरिक स्तर, कि गर्मी, सर्दी, बारिश, भूख, प्यास, इससे शुरुआत करो। तो इससे शुरुआत कर फिर मान अपमान सुख दुख, ये थोड़ा ऊंचा स्तर है, इसमें सहिष्णु होना। कि कई बार लोग इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक रूप में सहिष्णु रहते हैं। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में जो सफर करते हैं ये लोग बहुत सहिष्णु रहते हैं, इतने सहिष्णु, चाहे कितनी भी गर्दी आ जाए, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बदबू हो, परंतु उसमें भी लटके 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 दिन रात दिन रात। और कई बार तो लोग गर्व करते, 25 साल से मैं लटक रहा हूं। तो 25 साल से वो एक ही बोगी में एक ही जगह पर लटकता रहता है, और इतने लोग आते जाते हैं वो खड़ा रहता है। कई लोग कोई परवाह नहीं कि कितने लोग अंदर घुसे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, उसका नाक किसी के काख में है, बदबू आ रही है सब जगह, कोई परवाह नहीं। सहिष्णु, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। और ये जैसे कि हम लोग हाथ ऊपर करके भगवान की आराधना करते हैं, वैसे वो लोग भी हाथ ऊपर करके ट्रेन में। तो बहुत सहिष्णु होते, लेकिन किस लिए? थोड़ा सा वहां पर देखिए, उनमें देखा जाता है कि शारीरिक रूप से सहन करते हैं ये लोग, परंतु वहां पर उन्हें कोई कुछ कह दे उनके मान को ठेस पहुंचे, तब तो फिर वहां पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि उपस्थित हो जाती है। कई बार वो एक दूसरे को देखते भी नहीं, कोई यहां से घुसा है, कोई वहां से घुसा है, और वो कह रहे हैं अरे आगे चलो, उतरना है, दादर आ रहा है, दादर आ रहा है। तो वो यहां से कहता है अरे पहले आना चाहिए था ना, उधर सो रहा था क्या? तो ये यहां से कहता है अरे तेरा बाप सो रहा था। अरे बाप की बात करता है तू, नीचे उतर, तेरे बाप क्या पूरे खानदान को मैं सुलाता हूं, अभी तक देखे नहीं एक दूसरे को, परंतु पहुंच गए बाप परदादा पर, जो बेचारे पता नहीं कौन से पितृलोक में होंगे। दादर पहुंचने से पहले वो लोग पितृलोक पहुंच गए। तो शारीरिक रूप से सहन करते हैं, परंतु मान अपमान इसमें बिल्कुल सहन नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी पैर रख दे तो इतना धक्का खा रहा है उसके अंदर, एक थोड़ा सा पैर लगने से, क्योंकि उसमें अपमान हुआ, मेरे पैर पर तुम्हारा पैर कैसे, अरे भाई ये 100 लोग तुम्हारे सर पर चढ़े हुए हैं उसका क्या, नहीं तुम्हारा पैर मेरे पैर को टच कैसे हुआ। तुरंत वहां पर गोला बारूद निकालकर मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए एक जो प्रगति कर रहा है भक्ति में, उसका लक्षण क्या होना चाहिए कि कम से कम शारीरिक रूप से मेरे अंदर सहनशीलता उत्पन्न होनी चाहिए। और इस भौतिक संसार में देखिए स्थिति ऐसी है कि कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी जिसमें हमें सहिष्णु बनना ही होगा। अरे बारिश गिर रही है तो क्या हम बारिश को रोक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? छतरी ले सकते हैं। तो बारिश को हम नहीं रोक सकते कि अरे ये बादल रुक जाओ, मैं आदेश देता हूं, मैं मैनेजर हूं, डायरेक्टर हूं इस कंपनी का, छतरियों की कंपनी का। खैर वो आदेश देगा कि बरसो ताकि मेरा धंधा अच्छा चले। तो हम इस भौतिक संसार में स्थिति ऐसी होती, जैसे कोई किसान है, किसान जब कुछ उगाना चाहता है तो उसे बहुत चीजों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। उसके पास अच्छा बीज होगा, परंतु यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो फायदा क्या अच्छा बीज होने का? बीज अच्छा है, भूमि उपजाऊ है, परंतु पानी नहीं, वर्षा नहीं हुई उस साल। और यदि यह सब कुछ हुआ परंतु कोई सब कुछ लूट के ले गया, तो इस संसार में ऐसी स्थिति होती रहती है। ये जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, अच्छा समाचार और बुरा समाचार, इस भौतिक संसार में केवल यही दो चीजें हो रही हैं कि कई बार हमें कुछ अच्छा समाचार मिलता है कि हाँ इंक्रीमेंट हो गया, बोनस मिल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और उसके तुरंत दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते समाचार मिलता है कि आपका ट्रांसफर भी हो गया लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, वहां पर ट्रांसफर हो गया। ये डिफेंस में कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट पे कमीशन में, कौन सा, 5th या 6th पे कमीशन में अभी सबकी तनख्वाह जो है वो डबल होने वाली है, तो पे कमीशन में तनख्वाह डबल होने वाली है, चलो चलो अरे पार्टी, दारू लाओ, ये करो वो करो। और फिर जब ऑफिस में गए तो वहां पर टेलीग्राम आया, आपका पोस्टिंग हुआ है लद्दाख, लो अभी वहां पियो, कितना पियोगे? जैसे कि एक सैनिक के विषय में हमें बताया गया था कि एक सैनिक युद्ध में, वो बेचारा लड़ रहा था अपने देश के लिए, तो लड़ते हुए हुआ ऐसा कि बहुत घायल हुआ, और इतना घायल हुआ कि बहुत से गोलियां उसे लगी और घायल अवस्था में बेहोश हो गया। फिर उसे हॉस्पिटल में ले गए, आर्मी हॉस्पिटल में, और वहां पर जब उसे होश आया तो डॉक्टर आकर कहता है कि अच्छा समाचार है और बुरा समाचार है, कौन सा पहला सुनना चाहते हैं? तो उसने कहा पहला बुरा सुना दो ताकि अच्छा सुनूंगा तो थोड़ा बाद में चेतना थोड़ी अच्छी रहेगी। तो बुरा समाचार यह है कि तुम्हारे दोनों पैर काटे गए। क्योंकि गोली का जो बारूद था अंदर तक घुस गया था, तो दोनों पैर काटने पड़े। तब उसे समझ में आया कि उसके दोनों पैर नहीं है। तो पूछा कि अच्छा समाचार अब क्या है? अच्छा समाचार ये है कि तुम्हारे जो आर्मी के जूते हैं वो 10,000 में बिके। अच्छा समाचार, तो इसको क्या कहोगे आप? कि वो बहुत, यदि वो बहुत खुश हो जाए, अरे 10,000 में मेरे आर्मी के जूते बिके, तो और भी मेरे जितने भी और पैर होने चाहिए थे सब कट जाने चाहिए, हा? ऐसा कहेगा वो? जैसे हम कहते हैं मम भक्तिर, कि हर समय मुझे भक्ति मिलती रहे भगवान, तो वैसे ही मेरा जन्म होता रहे, ऐसे ही मेरे पैर कटते रहे, जूते बिकते रहे, ऐसे वो यदि कहेगा कभी। तो इस संसार का ये लक्षण है, अच्छा बुरा। इस संसार इसी प्रकार से बुरा समाचार है पैर कटे गए, अच्छा समाचार है जूते बिक गए। तो ये जो ये शारीरिक, और विशेष रूप से इसमें कहा गया है वीजर, कि बुढ़ापे, जब बुढ़ापा आता है तो हम किस प्रकार से उस बुढ़ापे को झेलते हैं या सहन करते हैं, ये एक लक्षण है जीवन मुक्त होने का। जैसे कि संसार में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा सा मिल जाए, तुच्छ वस्तु मिल जाए, तो उसमें वो बहुत खुश हो जाता है। विशेष रूप से शारीरिक तौर पर यहां पर कहा गया वीजर। जैसे कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, उसने देखा कि सुबह सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखता है तो अरे बाल एक काल सफेद हो गया, एक बाल सफेद, कैसे मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा अब लोगों को, लोग पूछेंगे अरे बूढ़ा हो गया रे, बाल सफेद हो रहे हैं तेरे, पक गया, बाल पक रहे हैं। तो तुरंत उसे काला करो या उसे निकालो। तो वी जरा, ये जो जरा है ये कई बार बहुत भयावह हो जाती है लोगों के लिए। इसलिए शंकराचार्य एक श्लोक में कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहित्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, वृद्ध अवस्था में क्या देखा जाता है, ये अंग जो है गलना शुरू हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, इतने सारे मेरे केश थे जब मैं जवान था, इनको मैं अलग अलग कंघियों से सवारा करता था, 10 प्रकार की तो कंघियां थी मेरे पास। तो यदि उस व्यक्ति के 80th बर्थडे में कोई उसको कंघा लाकर दे भेंट, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये सारे जो केश हैं केश विहीन हो जाता है, केशहीन दास, पहले केशव दास फिर केशहीन दास। तो मुंडम, प्रकृति मुंडन कर देती है बिना रेजर के। फिर दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख के अंदर ये जो मेरे मोतियों जैसे चमकते हुए दांत थे जिन्हें मैं इस प्रकार से खिलखिलाकर हंसकर दिखाया करता था, देखो मेरे दांत, लोग फोटो खींचा करते थे और कहते थे दांत दिखाओ स्माइल। अब यदि मैं एक स्माइल करूं तो सब उसका विकेट उड़ गया है, एक एक करके जितना भी अंदर दांत थे वो सारे दांत चले गए अब। तो दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहित्वा दंडम, वृद्ध अवस्था में अब तीसरा पैर दंड के रूप में, तीसरा पैर वो दंड के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी कहा गया है तदापि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा कम नहीं हुई। इस संसार से जो आसक्ति है वो अब तक जवान है और वो जवानी के ही पथ पर चल रही है कि बाकी सब कुछ अब ऐसा हो गया है कि जर्जर हो रहा है शरीर। इसलिए इस शरीर को कहते हैं, ये शरीर, ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जो सरकता रहता है, जो सरकता रहे वो है शरीर। और किस तरफ सरकता रहता है ये शरीर? मृत्यु, मृत्यु की तरफ सरकता रहता है। तो हम अपना बर्थडे मनाएंगे हर साल, और बर्थडे में वो लोग पाश्चात्य देश में क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कि जो व्यक्ति है 50 वर्ष का हो गया तो 50 मोमबत्ती, और उसे क्या करता है वो व्यक्ति, बुझाता है, बुझ गए 50 वर्ष मेरे जीवन के, एक फूंक में 50 वर्ष गए। तो ये जो जरा है इसके विषय में कहा गया है कि ये जो लक्षण है एक जीवन मुक्त का, कि वी जरा, कि वो जरा से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि भीष्म देव वो शारीरिक रूप से बिल्कुल प्रभावित नहीं, वो बाणों की शैया पर उस वृद्ध अवस्था में, पितामह भीष्म सबसे वृद्ध व्यक्ति पूरे कुरुवंश के, वो बाणों की शैया पर और अपने अंत समय वो भी रणभूमि पर, और वो भी देख रहे हैं कि कौरव और पांडव उनके ही दोनों जो वंशज, उनके ही बेटे परिवार वाले लड़ रहे हैं आपस में। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से देखिए कितनी पीड़ा भीष्म देव को हो सकती थी, परंतु भीष्म देव जीवन मुक्त, इसलिए वी जरा ये उनका एक लक्षण था। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अंत समय में कह दिया, कोई इच्छा नहीं। और तीसरा लक्षण वी मृत्यु, तीसरा लक्षण ये है एक जीवन मुक्त का कि वो प्रयास कर रहा है, भरसम प्रयास कर रहा है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का। इस भौतिक संसार में देखिए लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे करना चाहते हैं, आधुनिक तरीके से, कि मैं आधुनिक तरीके से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं। परंतु एक भक्त भगवान की साधना भक्ति में जो लगा है वो विमृत्यु इस लक्षण को कैसे प्राप्त करता है कि उसने अपने आप को भक्ति में इतना पक्का बना लिया है कि फिर से उसे अब जन्म नहीं लेना, पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि इस भौतिक संसार में कहा गया है कि सबसे भयावह चीज है फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, फिर से किसी के गर्भ में जाना, पैदा होना, फिर से बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सबसे महतो भयात कहा गया है इसे भगवद गीता में। परंतु एक जीवन मुक्त व्यक्ति वो है जिसने सारा प्रयोजन कर लिया है जीते जी कि वो फिर से जन्म नहीं लेने वाला इस भौतिक संसार में। तो यदि हमारे अंदर ये एक लक्षण है कि हम वो प्रयोजन को इकट्ठा कर रहे हैं, उस अभिप्राय से जी रहे हैं, तो हम भी जीवन मुक्त के ही पथ पर हैं। और ये जो विमृत्यु है इसके विषय में कहा गया है कि इस भौतिक संसार में देखिए ये जितने भी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों का अर्थ क्या है कि अलग अलग प्रकार से जीवात्मा मृत्यु से बच रहा है, अलग अलग योनि में जाकर वो परख रहा है कि क्या इस योनि में मृत्यु मुझे नहीं आएगी, क्या उस योनि में नहीं आएगी, या इस योनि में मैं अधिक मृत्यु को टाल पाऊंगा। मेरा एक मित्र था, वो मित्र, उसकी एक इच्छा थी केवल कि यदि अगला जन्म है तो मुझे अगले जन्म में पक्षी बनना है। तो मैंने कहा, क्यों भाई, पक्षी क्यों बनना है? तो उसने कहा, देखो पक्षी जो है वो कहीं पर भी उड़कर जा सकता है, कुछ भी खतरा हुआ उड़कर वो जा सकता है, बचा लेगा अपने आप को। यहां पर क्या है कि उड़कर कहीं पर जा नहीं सकते, कोई उड़ा देता है तुमको। तो उसकी पूरी चेतना, पूरा प्रयास उसका यही था कि वो अगले जन्म में पक्षी बने। अब देखिए, जो पक्षी हैं वो भी परेशान, ऐसा नहीं कि पक्षी बनने के पश्चात आप बस केवल उड़ते ही रहते उड़ते ही रहते। अरे उड़ के करोगे क्या, कहां उड़ते रहोगे। जैसे कि एक बार हम राधा गोपीनाथ मंदिर के छत के ऊपर जप कर रहे थे, तो सुबह का समय था, तो छत के ऊपर देखा कि जैसे ही उजाला हुआ तो सारे पक्षी सुबह के समय उड़ना शुरू करते हैं। एक कौवे, ये कबूतर, चिड़िया, तोते, ये सब उड़ना शुरू किए। और ये लोग ऐसे उड़ रहे थे मानो कि बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं। इनको मैं देख रहा था ऐसे घाई घाई में, वो कबूतर घाई घाई में जा रहा है, कौवा भी घाई घाई में जा रहा है, मानो जैसे कोई लोकल ट्रेन मिस हो रही है इन लोगों। तो घाई घाई में ये लोग उड़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बहुत ये लोग व्यस्त हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में व्यस्त हैं। और यदि इनको आप देखते रहो, मैं देख रहा था एक कौवा इतना तेजी से उड़ते हुए गया, उड़ते हुए गया और जाकर एक तार के ऊपर बैठ गया। बस जब वो उड़ रहा था तो सबको ऐसे कह रहा था, अरे दूर हटो, अरे बहुत इमरजेंसी है, मीटिंग मिस हो जाएगी, ऐसे वो उड़ रहा था और जाकर केवल एक तार पर बैठा है। तो ऐसा नहीं कि पक्षी जो हैं वो स्वतंत्र उड़ पा रहे हैं और बहुत खुश हैं। ये पक्षियों को पकड़ पकड़ कर अंदर बंद किया जा रहा है पिंजड़ों में, और जितना अधिक सुंदर वो पक्षी, हमारे गोपालन प्रभु का साक्षात्कार हम एक बार बता रहे थे कि हम लोग एक ये हमारे फाउंटेन के लिए एक दुकान पर गए जहां पर ये सारे फाउंटेन की चीजें मिलती, तो उसके सामने एक पक्षी घर जहां पर पक्षियों को पिंजड़े के अंदर बंद रखा, तो जितने भी पक्षी पिंजड़े में बंद थे वो सब सुंदर दिखने वाले पक्षी। तो हमारे गोपालन प्रभु का साक्षात्कार कि जो जितना सुंदर होगा उतना पिंजड़े में बंद होगा। कोई कभी कौवे को पिंजड़े में बंद कर घर पे नहीं लगता। कभी देखा है किसी घर में कौओं को पिंजड़े में बंद रखा है? दर्शन कीजिए, ये नासिक के कौवे विशेष सबसे काले हैं परंतु दिल वाले हैं। कोई कौओं को इस प्रकार से पिंजड़े में बंद कर नहीं रखता। तो पक्षी यदि उसमें त्रस्त हो जाए कि शिकारी भी कई बार उनको मार देते हैं खाने के लिए भी, ऐसा नहीं कि पक्षी बनने के बाद फिर भोजन, पक्षियों को बहुत मेहनत करना पड़ता है भोजन इकट्ठा करने के लिए, और सुबह सुबह निकल जाना पड़ता है भोजन इकट्ठा करने के लिए पक्षियों को। तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि अरे मैं पक्षी होने की वजह से पिंजड़े में बंद होता हूं, तो ठीक है मैं हाथी बनता हूं, हाथी को कौन पिंजड़े में बंद करेगा। तो हाथी बन जाए तो हाथी के ऊपर भी वो महुत बैठा हुआ है अपना अंकुश लेकर, वो है 5 फुट का, वो है 5 फुट का, लेकिन हाथी के ऊपर बैठकर वो एक रशिया में एक सर्कस की प्रदर्शनी चल रही थी, उसमें दिखाया गया था इतना बड़ा हाथी और वो छोटा सा 5 फुट का भी नहीं होगा, वो 5 फुट से भी कम, वो महूत उस हाथी को एक उसका एक इतना सा छोटा सा अंकुश था उसमें लगा रहा है, उसको टोक रहा है, और वो करने से वो हाथी अपना दोनों पैर ऊपर कर सब दर्शकों को दिखा रहा है। अरे वो हाथी का बस चले तो इस महूत को पकड़कर ऐसा पटके कि फिर से वो कभी चेष्टा ना करे इस हाथी को कुछ करने की। तो कोई सोचे कि हाथी की योनि में मैं चला जाऊं तो मैं सबके ऊपर हावी होऊंगा, परंतु वो भी बंदी बनाया जा सकता है हाथी। तो कोई कहे ठीक है मैं छोटा सा कीड़ा बन जाता हूं, तो कीड़ा बनूंगा तो फिर कोई देख भी नहीं पाएगा, तो कोई देख भी नहीं पाएगा तो अरे कोई पकड़ेगा कैसे, और कीड़ों को कौन पकड़ता है, तो कीड़ों को कौन पकड़कर पिंजड़े में डालेगा, कीड़ों को कौन से सर्कस में ले जाएगा कोई दिखाने के लिए। तो जीवात्मा सोचता है कि चलो मैं कीड़ा बन जाता हूं, परंतु कीड़ा क्योंकि दिखाई नहीं देता तो कोई पैर रख देता है फिर उसके ऊपर, हो गया वही खत्म जीवन। और छिपकली ने यदि देख लिया तो वो तो उनके ही पीछे रहते हैं, छिपकलियां कीड़ों के पीछे, तो उसका भी जीवन कोई शांत कोई ठिकाने पे नहीं, कीड़ा बन जाए तो फिर वो सोचे ठीक है पक्षी नहीं उसमें समस्या है, हाथी में समस्या, कीड़े में समस्या, चलो मैं मनुष्य बन जाता, या मनुष्य से पहले यदि कीड़े को लोग ऐसे तो मैं वृक्ष बन जाता हूं, तो वृक्ष को कौन कुचलेगा, तो वृक्ष को भी समस्या है, बहुत समस्या है वृक्षों को कि उनको भी काट कर ले जाया जाता है, तो कोई व्यक्ति के ठीक है मनुष्य बन जाता, ये मनुष्य सबके ऊपर हावी है तो मैं मनुष्य बन जाता हूं, तो मनुष्य बन जाए और मनुष्य बनने के पश्चात फिर दूसरा मनुष्य आके उसको गोली से मार देता है, तो वो सोचता है कि ठीक है मैं देवता बन जाता हूं, वहां पर कोई गोली नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है वहां पर, तो मैं देवता बन जाता हूं, लेकिन वहां पर भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। एक व्यक्ति स्वर्ग लोक गया और वहां पर जैसे ही स्वर्ग लोक गया तो वहां पर उसे पूछा गया कि ठीक है तुम्हें क्या यहां पर भोग चाहिए, सबसे पहले सोमरस चाहिए या सोना है यहां पर या अप्सरा चाहिए, क्या चाहिए। तो उसने कहा सबसे पहले मुझे बताओ कि मैंने कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से मैं यहां पर आया हूं। तो सुनना चाहते हो, ठीक है। तो सभियों को बुलाया गया और बताया गया सब, इसके जितने भी इसके रजिस्टर में पुण्य का खाता था उसमें क्या क्या पुण्य, तो सभी बताने लगे और ये सुन रहा है, अरे रे मैंने ये दान दिया था, वो किया था, अरे हाँ ये किया था मैंने, वो किया था, तो सब कुछ जैसे सुन रहा था, तो क्योंकि ये अपनी प्रशंसा सुन रहा था तो प्रशंसा सुनने के वजह से उसके पुण्य क्षीण हो रहे थे, तो दूसरे रजिस्टर में वो जो इतने बरस वहां पर जीने की उसकी अवधि थी वो कम होता गया कम होता गया। और जैसे ही उसने अपने सारे पुण्यों के विषय में अपनी प्रशंसा सुनी, उसे धीरे धीरे स्वर्ग लोक के कोने में ले जाया गया, एक मग सोमरस का दिया था हाथ में, और वहां से अप्सरा ने एक धक्का मारा उसे, ओ अरे धक्का हो गया, क्योंकि तुमने अपनी प्रशंसा सुनी सबसे पहले आते ही, तो तुमने अपने सारे पुण्य क्षीण कर दिए प्रशंसा सुनकर, और इसीलिए मर्त्य लोकम विशन्ति। तो कोई यदि देवता भी बन जाए तो वहां से भी नीचे गिरना पड़ता है, तो इसलिए विमृत्यु, मृत्यु के परे जाना है, इसका अर्थ है कि जन्म मृत्यु के चक्र से इस भौतिक देह से ऊपर, यदि ये प्रयोजन कोई व्यक्ति कर रहा है 84 लाख योनियों से ऊपर उठकर भगवत धाम जाने का प्रयोजन है तो वो जीवन मुक्त है। और फिर चौथा लक्षण है विशोक, कि ये जो व्यक्ति है ये इस भौतिक संसार का जो सुख दुख है, सबसे पहले हमने इसके पहले लिया था विजरा, कि शारीरिक रूप से जो सुख दुख आता है उसके परे होता है, परंतु ये व्यक्ति विशोक, यदि मानसिक रूप से भी कोई शोक अवस्था आ जाए इसके जीवन में तो उसके परे ये यदि अपना जीवन जिए तो ये व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। और इसीलिए इस संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के शोक में है, कोई व्यक्ति शोक में है कि कुछ मिला नहीं, कोई व्यक्ति शोक में है कि मैं वो मुझे मिला और खो गया मेरे हाथ से। तो शोक अवस्था से ऊपर आने का ये चिन्ह है जीवन मुक्त होना। और पांचवा लक्षण है विजिघत्स, विजिघत्स का अर्थ है कि ये व्यक्ति जो जीवन मुक्त के पथ पर है वो व्यक्ति कभी भौतिक इच्छाओं में अपने आप को नहीं फंसाता। भौतिक इच्छाओं से वो हर समय ऊपर रहता है। जैसे ही कोई भौतिक इच्छा आ जाए तुरंत वो उस भौतिक इच्छा से अपने आप को निकालकर आध्यात्मिक इच्छा में डालना चाहता है। और इसलिए इसके आगे का लक्षण है अपिपात। यह है छठा लक्षण कि वो भौतिक इच्छा से अपने आप को निकालकर भगवान की भक्ति में ही लगना चाहता है। यही एकमात्र इच्छा एक जीवन मुक्त की होती है। तो यदि हमें अपने आप को परखना है तो देख लेना चाहिए कि मेरी इच्छाएं कितनी भगवान की भक्ति में लग रही हैं और कितनी भौतिक हैं। और फिर सातवां लक्षण यह है कि वो व्यक्ति सत्य काम, उसकी जो भी कामना होती है उसके पश्चात वो केवल परम सत्य को प्राप्त करने के लिए ही होती है। तो जब तक हमारी कामना परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की नहीं हो तब तक हम जीवन मुक्त इस पथ पर नहीं हैं। और अंततः अंतिम चिन्ह या लक्षण इस जीवन मुक्त का यह है कि वो सत्य संकल्प रहता है। सत्य संकल्प का अर्थ है कि भगवान फिर उसने जो कुछ संकल्प लिया है उसे सत्य सिद्ध करते हैं। यह है अंतिम लक्षण एक जीवन मुक्त व्यक्ति का। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब ब्रह्मा जी विमोहित होकर देख रहे हैं कि भगवान विस्तारित हुए हैं इतने सारे ग्वाल बाल और गायों में बछड़ों में, तो वहां पर भगवान विष्णु वो ब्रह्मा जी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, चंद्रिका विशदस्मेरई सारुनापांग विक्षितई स्वकार्थानं इवरज सत्वाभ्याम सृष्टिर्पालक। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जब अपने नेत्रों से अपने भक्तों की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो भगवान विक्षितय, भगवान के जो दृष्टि है उनका जो दृष्टिपात है उनकी आंखें अंदर से उनके अंदर आंखों में लालिमा है भगवान की आंखों के अंदर। तो जो लाल रंग है वो रजोगुण का प्रतीक माना गया है। इसलिए यहां पर रजह सुखदेव गोस्वामी ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भगवान की दृष्टि में रजह है और रजस उसका इस्तेमाल होता है सृष्टि उत्पन्न करने में। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं क्योंकि वो सृष्टि करता है, तो रजोगुण से सृष्टि होती है। तो यहां पर भगवान की दृष्टि उनको रजह कहा गया है, परंतु संस्कृत में रजह का एक और अर्थ होता है स्नेह, स्नेह जिसे कहते हैं। तो भगवान जब उस रजह उस स्नेह से अपने भक्तों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, विशेष रूप से उस जीवन मुक्त के ऊपर, तो सृष्टि करते हैं भगवान, क्योंकि रजह शब्द है तो सृष्टि होनी चाहिए। तो क्या सृष्टि करते हैं? आध्यात्मिक भक्तिमय इच्छाओं की सृष्टि। भगवान के दृष्टिपात से आध्यात्मिक इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। और फिर स्मेरही, भगवान फिर मुस्कुराते हैं। तो भगवान की जो मुस्कान है वो सत्व गुण में है। तो भगवान की जो मुस्कान है वो उन इच्छाओं का पालन करती है। कई बार हमारे अंदर भक्ति की इच्छा होती है परंतु टिकती नहीं बहुत समय तक। वो टिकती क्यों नहीं? क्योंकि भगवान की मुस्कान की कृपा अब तक हमारे ऊपर नहीं पड़ी है। तो भगवान की दृष्टि से आध्यात्मिक इच्छाओं की उत्पत्ति होती है और भगवान की मुस्कान से उन इच्छाओं का पालन, उनकी सुरक्षा भगवान अपनी मुस्कान से करते हैं। तो हमें भगवान की ये दोनों चीजें चाहिए। यदि हमें ये जो अंतिम सत्य संकल्प यदि बनना है कि भगवान का दृष्टिपात रज उनके स्नेह से और भगवान की मुस्कान, और भगवान कब दृष्टिपात करेंगे जब देखेंगे कि हम सेवा में लगे हैं। बाकी सारे लक्षण जो हमने चर्चा की वो सारे लक्षण यदि हमारे अंदर पाए जा रहे हैं कि नहीं, तब भगवान दृष्टिपात करेंगे। और जैसे ही भगवान ने तब दृष्टिपात किया तो भगवान की मुस्कान उन हमारी भक्तिमय इच्छा की रक्षा भगवान करेंगे। इसलिए सत्य संकल्प जो भगवान के शुद्ध भक्त जीवन मुक्त होते हैं वो जो भी संकल्प लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने संकल्प लिया, राधारास बिहारी को कहा कि अभी केवल एक झोपड़े में आपको मैंने रखा है। उस समय राधारास बिहारी एक टिन के झोपड़े में थे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा एक दिन मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर निर्माण करूंगा। तो ये सत्य संकल्प श्रील प्रभुपाद जी का वो सिद्ध कर सके क्योंकि उनके ऊपर भगवान की दृष्टिपात थी और भगवान की मुस्कान की कृपा थी। और यदि हमें भी अपने आप को सत्य संकल्प बनाना है कि ये मैं संकल्प लूं कि मुझे इस जीवन के बाद और जन्म नहीं लेना। सत्संगत्वे निस्संगत्वा, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कि मुझे सत्संग में आने के पश्चात फिर से दुस्संग में नहीं जाना, फिर से उस कीचड़ में नहीं जाना, फिर से उस शौचालय में नहीं जाना। यदि उन सब से हमें बचना है तो हमें ये सारे जो लक्षण हमने जिनकी चर्चा की देखना है कि मेरी साधना भक्ति में ये सारे लक्षण एक एक कर आ रहे हैं कि नहीं। और यदि उस अंतिम श्वास लेने से पहले यदि ये सारे लक्षण हम में आ गए तो हम जीते जी मुक्त हो गए हैं। और उसके पश्चात तो भगवान अपने दृष्टि से और अपनी मुस्कान से हमें भगवत धाम तो ले जाएंगे ही। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गौर भक्त वृंद की जय।